तुम, वो नहीं, तुम माना जो सन्मुख बैठते हो बाप के, वो ही चौरासी में लेते लेते बहुत पतित बने हो। दूसरे धर्म की आत्माएं तो न ज्यादा पतित बनती और न ज्यादा पावन बनती है, भक्ति भी तुमने की है ना, माना तुमने हमारी बहुत ग्लानी की है, भक्ति करना माना अंधश्रद्धा युक्त भक्ति करते। एक तरफ शिव की बहुत महिमा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ से कहते हो कचमच अवतार हो, कच्छ में अवतार लेते हो, मत्स्य में अवतार लेते हो, मन जानवरों में आ जाते हो। कणकण में मेरे को डाल देते हो, कंकड़ पत्थर में डाल देते हो, कितनी ग्लानी करते हो, मतलब मैं कोई कच्छ मच्छ जैसे जानवरों में या पत्थर बुद्धियों में नहीं आता हूँ, कंकड़ पत्थर जैसी बुद्धियों में नहीं आता हूँ, ऊंच से ऊंच धर्म पिताएं ऊंच से ऊंच नहीं आवेंगे ना, जो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा वो उतने ही ऊंच देवता में प्रवेश करेगा। नियम है, हिसाब है, जैसा आदमी होता है वैसा उसका फर्नीचर होता है। तो मेरे को तुम कच्छ अवतार में डाल देते हो, कितनी ग्लानी करते हो। आजकल तो फिर खुद को शिव ओम तक तुम कह देते, कि हम ही शिव हैं वही तुम हो, माना गुरु भी शिव परमात्मा और चेला भी शिव परमात्मा, या तो फिर कहते हो तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा तो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा को याद दिलानी पड़े क्या, कि हर आत्मा तो परमात्मा नहीं बनती, हर एक आत्मा कोई परमात्मा का रूप धारण नहीं कर सकती है। सर्वथा सदगति दाता एक भी परम पिता परमात्मा है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप अलग है, प्रदर्शनी में भी ये दिखाना होता है कि शिव अलग है और शंकर अलग है। ये अलग अलग करके क्यों दिखाया बाबा ने, ताकि बुद्धि में बैठे कि इनमें पतित पावन कौन सा है, शिव है पतित पावन या शंकर है पतित पावन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर होना चाहिए। शरीर तो दोनों का एक ही है, एक ही शरीर से दोनों आत्माएं कार्य करती हैं, लेकिन काम करने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। हाँ, शरीर के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है, तो बुद्धि में रहना चाहिए कि पतित पावन कौन है। शंकर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहना चाहिए, किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए, शिव बाबा। हमें लेना किससे है, लेना देना हमारा शिव बाबा से है। प्रश्न तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है, तो सिद्ध हो जाए यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण द्वापर में तो गीता सुनाने आते ही नहीं है, तो द्वापर में क्यों डाल दी, द्वापर युगी शूटिंग में वो कृष्ण की शोर संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है, खास करके ब्राह्मणों की संगमित दुनिया में। तो द्वापर में किसने को डाल दिया है? अति तो होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग आदि में, तो जरूर संगम पर आवेंगे, ये बात ही जानते हैं, वो ही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को तो त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वो थोड़े तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं, उनको सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ही नहीं। कहते हैं वो तो छोटा बच्चा है, कौन? कृष्ण। माना बच्चा बुद्धि है, कृष्ण तो बच्चा है, तो बाप कौन हुआ? शिव बाबा। शिव बाबा माने कृष्ण जो पैदा होगा सतयुग में उसको शिव बाबा जन्म देगा, कृष्ण तो बच्चा हुआ, वो तो ज्ञान दे नहीं सकता। मतलब क्या है, कृष्ण की सोल कोरे कागज के वाकत है, उसमें ज्यादा किया पैसा नहीं है, शेर दिखाते हैं ना, तो एक बबर शेर दिखाया जाता है, देवी के भी दो रूप हैं, सिंहवाहिनी और बागंबरी, बाघ के ऊपर सवारी करने वाली, बाघ भी शेर है और सिंह भी शेर है। प्रेम बुद्धि कौन सा होता है और तीखा ज्यादा कौन सा होता है? सिंह प्लैन बुद्धि होता है और बाघ, बाघ ज्यादा तीखा होता है, वो सीधा हमला करेगा और वो मौका देख करके हमला करता है, विकराल रूप धारण कर लेता है। तो शंकर को कौन सा अंबर दिखाया जाता है? बाघ अंबर। शेर की खाल नहीं दिखाते बब्बर शेर की, लेकिन बाघ की खाल दिखाते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो बच्चों के लिए माँ ज्यादा खतरनाक होती है आखिरी बच्चों के लिए, कि बाप ज्यादा खतरनाक होता है? बाप खतरनाक होता है। अगर माँ खतरनाक बनती भी है, आसुर संगायनी बनती भी है, तो बाप के इशारे पर बनेगी। जिस माँ के साथ बाप नहीं होगा तो बच्चे भी उसकी कदर नहीं करते। तो बाप कहते हैं कृष्ण छोटा बच्चा है, माना बच्चा बुद्धि है, माना ब्रह्मा की सोल में परमात्मा शिव ने जो ज्ञान सुनाया, तो ब्रह्मा की सोल कोई ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती, जैसे छोटा बच्चा कोई गहरी बात को नहीं समझ सकता। ब्रह्मा से ज्यादा बुद्धि तो मम्मा की चलती थी, वो ज्यादा गहरी बात को समझ लेती थी। तो ब्रह्मा का पार्ट था ही बच्चा बुद्धि का, इसलिए मुरली ने भी बोला है ब्रह्मा को शिव बाबा बेबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेबी बुद्धि थी। मुरली में शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से बोला, बच्चे 10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा, संख्या कट में बोला, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या समझ लिया कि तू दुनिया का विनाश हो जाएगा? ये भूल गए कि मुरली में ये भी बाबा कहते हैं कि विनाश ज्वाला रुद्र की आनी है कि कुंड से प्रज्वलित हुई, तो यदि कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो पहले विनाश किसका होगा? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में यदि कुंड के अंदर बबू का फूटेगा, उसके आस पास बैठे ब्राह्मणों को पहले सेक लगेगा कि दुनिया वालों को सेक लगेगा? पहले तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया स्वाहा हो, उसमें कचरा भस्म हो, तो ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठी। क्यों? कैसी बुद्धि थे? बच्चा बुद्धि। तो बात कहते हैं कृष्ण तो छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आखिर यहाँ भी प्रिंस प्रिंस कॉलेज थी, अभी तो मिक्स हो गए, कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगी, इकट्ठे पढ़ते होंगे, वहां तो है वॉइसलेस वर्ल्ड। एक चूहा भाई सर्व का सदगति दाता है, मनुष्य सर्व की सदगति दाता नहीं हो सकता। बात ही आकर के सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, ये भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। वो धर्म तो आए ही आधा में, तो सतयुग में कैसे हो सकते हैं? वो है हठयोगी कौन? दूसरे धर्म वाले सब हठयोगी हैं, निवृत्ति मार्ग के। वो राजयोग को समझ नहीं सकते। तो ब्राह्मणों की संगम में दुनिया में होना हठयोगी धर्मों के जो आधारभूत ब्राह्मण बैठे हुए हैं, या जो उन हठयोगी धर्मों की बीज रूप ब्राह्मण बैठे हुए हैं एडवांस पार्टी में, वो भी सहज राजयोग को और प्रवृत्ति मार्ग को समझ नहीं सकते हैं। जल्दी नहीं समझेंगे, चेंज तो उनको होना है लेकिन बाद में चेंज होना। तो सन्यासी आदि को ला दे तो बोलो तुम्हारा तो मार्ग ही निवृत्ति मार्ग का लगे। तुमको देवता थोड़े ही बनना है, माना ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो दूसरे दूसरे धर्मों के आधार हैं, हम उनसे ऐसा डायरेक्ट कह दें कि तुम्हारा तो रास्ता ही दूसरा है, तुमको देवता नहीं बनना है, वो मानेंगे इस बात को? मानना पड़ेगा। इस तरह मानना पड़ेगा कि जब तुम पढ़ाई यहाँ इस जन्म में पढ़ते हो और कहते हो हम अगले जन्म में प्राप्ति करेंगे, तो तुम यहाँ देवता बनोगे क्या? इसे साबित हो गया कि वो उस जन्म में देवता नहीं बनेंगे। तो उनका निवृत्ति मार्ग अलग है, उनको देवता बनना ही नहीं। ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। कैसे मार्ग वालों के लिए? वैष्णव कहते हैं। किसकी औलाद? विष्णु की औलाद को वैष्णव कहा जाता है। जो विष्णु के फॉलोअर हो वो वैष्णव हुए। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, मात्रा बढ़ जाती तो विष्णु के बच्चे विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। तो हमारा तो यही प्रवृत्ति मार्ग, भारत तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए। प्रवृत्ति मार्ग तो है लेकिन है कैसा? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग है लेकिन घर घर में वैश्चार्य है। शारीरिक कर्मेंद्रियों से वैश्चार्य नहीं होंगी तो दृष्टि वृत्ति से जरूर वैश्चार्य। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग में। भगवान वाज मां मेरे कम याद करो, क्या ये नहीं कहा भारत को याद करो? जो भारत पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला था अब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला बन गया। भारत इंडिविजुअल आत्मा के लिए भी कहा और भारत सारे देश, भारत वर्ष जब कहा जाए तो देश के लिए भी कहा जाता है। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई विशेष आत्मा भी है जिसको राम बाप कहा जाता है, इसलिए मुरली में बोला हुआ भी है क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि रामायण की सारी कथा भारत पर है, सिर्फ समझाने का सिर चाहिए। तो रामायण की सारी कथा भारत पर है या राम सीता के ऊपर? अरे हीरो के ऊपर सारी कहानी होती है। तो बाबा ये साबित कर देना चाहते हैं कि भारत शब्द इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है। तो बाप कहते हैं माँ मेरे कम याद करो, मन मुझको याद करो, जो भारत पतित है मैं भारत में आता जरूर हूँ, क्या मैं आता जरूर हूँ भारत में, लेकिन भारत को याद मत करो, उसको बार बार बुद्धि के सामने मत लाओ। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। इस 63 जन्म के संबंध प्रजापिता के साथ भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो 63 जन्मों के जो संबंध हैं, अगर उस देहधारी के साथ ही बुद्धि का योग लगा रहेगा और शिव बाबा को भूल जाएंगे तो प्राप्ति क्या होगी? तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूटती है, कोई अकर्तव्य भी किया होगा तो पिछाड़ी में वो साफ सामने आ जाएगा। साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते भी बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी। परंतु बहुत लज्जा किनारे सुनाते नहीं कि गंदे काम तो बहुत करते हैं ना। बुद्धि में याद तो जरूर रहता है, हाँ बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है क्या? वो जो सर्जन होते हैं वो तो विनाशी हैं। कहीं जोर से बीमारियों की चपेट में वो भी आ सकते हैं, लेकिन ये तो सर्जन ऐसा है जो बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। तो बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? तो कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा छूट जाएंगे, नहीं बताने से फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा और ही जाति फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मत बन जाएगी। क्या गीत चला था? दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नतीजा टूट न जाए। तो कहां की बात हुई? अभी अभी संगम युक्ति की ये सारी बातें हैं। ये गायन सब जितने भी हैं भक्ति मार्ग में वो सब संगम युग में लागू होते हैं। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से छूटेंगे। बाप कहते हैं देह से भी संबंध नहीं रखो, हमेशा मां में कम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। क्या कहा? कौन है धर्मराज? यह धर्मराज भी है। कौन? धर्म का राजा कौन है? धारणा की वाणी कौन चलाता है? ब्रह्मा की टोली तो धारणा की वाणी चलाएगी ना, देवात्मा है ना, उससे ऊंचा देवता तो कोई है नहीं। उसको जन्म देने वाला तो उसका बाप हो गया। वो तो परमात्मा पार्टी हुआ, उसको देवता देवता नहीं कहेंगे। तो ये धर्मराज भी है। कौन? ब्रह्मा की टोली ही कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके धर्मराज का पाठ बजाती है। धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे। अभी का ये धर्मराज कहता उनसे भी छिपाते रहेंगे, दूर क्यों कर दिया? जिस समय ये वाणी चली है उस समय वो स्वरूप कोई धर्मराज का रूप नहीं है, वो भविष्य में पाए तो वो आत्मा बजाएगी कोई ब्राह्मण बच्चे के थ्रू। इसलिए कहा उनसे, उनसे भी अगर छिपाते रहेंगे कब, भविष्य में। ये वाणी तो पहले की चली हुई है, तो भविष्य की बात माना, बाद की बात बताई। तुमसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। क्या वो दुनिया वाले दूसरे धर्मों से कनेक्टेड जो आत्माएं हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली, चाहे बीज रूप आत्माएं हों चाहे आधारभूत आत्माएं हों, वो तो बाप के जन्म को अंत तक बैठ करके पढ़ाई नहीं पड़ती। जो बाप के सन्मुख बैठ कर बाप के बच्चे बनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, वो अगर अवज्ञा करते हैं तो वो सजाएं बहुत खाएंगे। उनके जैसी सजा और दूसरों को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय, सभी पति पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे पापों का दंड भी एक सेकंड में महसूस होता है। एक सेकंड में सजाओं की भाषणा ऐसी आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खा रहे। ठीक है, ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, ये सबके कयामत का समय। सजा भोगनी तो जरूर है, तभी आत्मा प्योर होकर के जाती है। कोई प्रीति के बल से प्योर हो जाती है और कोई सजाएं खाकर के प्योर बनती है। बाकी आकर के पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, आकर के बनाते हैं, ऐसे नहीं आकर के ब्रह्मासन में ज्ञान सुना के चले जाते हैं फिर पति से पावन अपने आप बनते रहेंगे, नहीं। अपने आप नहीं बनते फिर भी धर्मराज बनाना पड़ता है। बाप के सिवाय और कोई भी ताकत नहीं इस बात की, जो पतित आत्माओं को पावन बनाए। तेरे जन्मों से पाप करते करते अभी तुम्हारा पापों का घड़ा जाकर भर गया है। कौन सा घड़ा? पापों का घड़ा पूरा ग्रहण लगा हुआ है, माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। ऐसे नहीं समझना सिर्फ ज्ञान चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का गायन है तो सूर्य चंद्र देवता को ही ग्रहण लगता है और देवताओं को तो ग्रहण लगता ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रह्मा अंधियारे में तो ब्राह्मण बच्चे भी अंधियारे, सबको ग्रहण लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है, दूसरे धर्म की आत्माओं पर ग्रहण लगता है लेकिन उन पर नंबर वार है और तुम पर बड़ा ग्रहण लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण मन, बड़ा ग्रहण कैसा होता है, छोटा ग्रहण कैसा होता है? छोटा ग्रहण लगता है तो थोड़ी सी लीक बचती है, आधा चंद्रमा रोशनी में रहता है आधा अंधेरे में आता है, और पूरा ग्रहण लगता है तो, बड़ा ग्रहण लगता है तो सारा ही अंधेरा हो जाता है। तुम सर्वगुण संपन्न थे फिर से ग्रहण तुम पर लगा है, ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम ही बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहलाए दिए। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया। मठ पंथ को डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे राजा चलती है। तुम बच्चे जानते हो हम आज सनातन देवी देवता धर्म के ही हैं। ये भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला ही नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आज सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। क्रिश्चियन होंगे तो किसकी मनौती पूजा करेंगे, गायन करेंगे, क्राइस्ट का ही करेंगे। तो अपने धर्म के चित्रों को ही पूजा जाता है। सिर्फ ये भूल गए हम ही पूज्य देवी देवता थे या पुजारी बने। अभी तुम समझते हो पाप ने वर्षा दिया था, अब फिर पतित बने तो वर्षा मिल ना सके। वर्षा कौन सा है? सड़क का वर्षा, सुख शांति का वर्षा। सुख शांति कहाँ होती है? जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ सुख और शांति होती है। तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते रहे, आते ही पूजिए, आते ही पुजारी के बाद भारत के और कोई नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर के ज्ञान देते हैं फिर से देवी देवता बनाने के लिए, बाकी सारे हिसाब किताब चुप चुप करके वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है। सतत पावन आओ कह करके बुलाते भी कौन है, कौन पुकारते हैं? आत्माएं सब सब कितनी आत्माएं हैं? सब आत्माएं बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर। तो ये भी समझने की बात है। इस समय तुमको तीन बाप है, एक शिव बाबा और दूसरा लौकिक बाप, और ये है अलौकिक प्रजा पिता ब्रह्मा। बाकी सबको दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सत्य में सिर्फ एक ही बाप लौकिक होता है, पारलौकिक बाप को तो वहां जानते ही नहीं। वहां तो होता ही है सुख, तो फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें? गैंग भी है दुख में सुन रहे सब करें। यहां से तुमको तीन बाप हो जाते, तो ये भी समझने की बात रही। बात वो आत्माभिमानी रहते हो फिर देह अभिमानी बन जाते हो, या तुम आत्माभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। परमात्मा अभिमानी कैसे? कि हम परमात्मा हैं। परमात्मा अभिमानी माने हम परमात्मा के बच्चे हैं। शुद्ध अभिमान है कि हम परमात्मा बाप के बच्चे हैं। कोई मनुष्य आत्मा के बच्चे नहीं है। तुमसे हम वर्षा ले रहे, वो बाप शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, ये उसकी विशेषता है। ऐसा दुनिया में और किसी के लिए नहीं कहा जा सकता। ये हो सकता है कोई बाप भी हो अपने बच्चों का शिक्षक भी हो, बाकी सदगुरु नहीं होता। लेकिन ये बाप भी है शिक्षक भी है और साथ ले जाने वाला सदगति करने वाला सदगुरु भी। तो ये उनकी महिमा समझानी पड़े। वो ही आकर के सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतगुरु तुमको ये वर्षा था पर 84 जन्म लेकर के गवाए। समझाना कितना सहज है, बाप को कहा जाता है पति से पावन सर्व का सदगति दाता, ये दुनिया ही पतितों की है। तो दुनिया जब पतितों की है तो कल तो डाउन है, पहले फिर बीच में वो ना हो जाए ना।
साक्षात्कार के आधार से बना वही शुरू में संदेश और आती थी ना शिक्षण अपन में, तो जो उनके साक्षात्कार होते हैं फिर बात आती थी, उसके बाद ये सूत्र बने। तो ये त्रिमूर्ति भोला लक्ष्मी नारायण और घर ये साक्षात्कार के आधार से बनाती थी। तो त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया गया है तीन मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो बाबा ने मुझे बोला है परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अकेले नहीं आते, क्या अकेले नहीं आते, तीनों मूर्तियां साथ में आती हैं। इसलिए मैंने बोला तो मूर्ति चिल्ड्रन के कहना है राइट, शिव जयंती का नाम है राम, क्योंकि शिव अकेला नहीं आता, तीनों मूर्तियों से साथ आता है। तो बताया परमात्मा शिव जो सृष्टि पर आए तो उस समय तीनों मूर्तियां सृष्टि पर आए, तो उसमें दिखा रहा है तीन मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सृष्टि, शंकर द्वारा विनाश, किनका आश्रय संप्रदाय का कचरे का विनाश, फिर उसके बाद विष्णु द्वारा पालन, जो देवी कुल की आत्मा है सृष्टि पर रह जाएंगे, उन आत्माओं की पालना फिर विष्णु के द्वारा होती है। तो बताया इसलिए मूर्ति एक होता मूर्त एक होता अमूर्त, मूर्त माना साकार मूर्ति, मूर्ति जब बनती है तो जरूर जो आत्मा सृष्टि पर आई सबको सर में उसका यादगार बना, जो सृष्टि पर आया ही नहीं होगा तो संसार उसका गायन पूर्ण कैसे होगा, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बताया इसने कि पहली मूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, लेकिन देवता धर्म की स्थापना नहीं, क्षत्रि धर्म की स्थापना नहीं। लेकिन ब्रह्मा से भी पहले हमारे यज्ञ तो मेरी बात मुझे गई थी ना कि परमात्मा शिव ब्रह्मा के तब में आए, कब आए 36 में, लेकिन बाबा जो मुरली में बताते हैं वो उनके आधार से ये बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि ब्रह्मा से भी पहले कोई बच्चे थे जिनमें परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, जो बाबा ने मुरली में भी बोला है क्या? बाबा को स्थापना मिला का साक्षात्कार हुआ है तब तो पहले समझ में नहीं आया कि हम ही विष्णु बनेंगे, तो किसी ने तो समझाया होगा ना, ब्रह्मा को तो समझ में नहीं आया, बाबा लेखराज को तो समझ में नहीं आया, तो कोई तो समझाने वाली आत्मा ही होंगी कि नहीं, जरूर हुई होंगी। तो ब्रह्मा से भी पहले कोई बच्चे थे जिनमें परमात्मा शिव ने प्रवेश किया 36 में, तो इस तरह जो है ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, स्थापना का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार तो हुए लेकिन उन्होंने साक्षात्कार का तो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, जो उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए, बाकी तो दुनिया में 12 गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने, तो उस समय जो अंतिम गुरु थे उससे जाकर के सब बताया कि मुझे इसी तरह ये साक्षात्कार हुए, इनका क्या रहस्य है। तो वो गुरु तो समझा नहीं पाए क्योंकि वो साक्षात्कार किसी मनुष्य ने नहीं कराया था, परमात्मा शिव ने ही उनको साक्षात्कार करा, तो जिसने साक्षात्कार कराया वही तो समझा सकता है ना। मनुष्य कैसे उसके साक्षात्कार को समझा पाएगा? तो उन गुरुओं ने अनुविधता जाहिर कर दी, हमने साक्षात्कार करने से जान दी। फिर बाबा बनारस ले गए, बनारस के बड़े बड़े विद्वान पंडित, बनारस के तो विद्वान पंडित माने हुए हैं ना। तो बाबा ने सोचा शायद वो विद्वान पंडित मेरे साक्षात्कारों का अर्थ समझा दे, तो उनके पास गए। वहाँ पर भी उनके साक्षात्कारों का समाधान नहीं हुआ। लेकिन जब किसी के अंदर संकल्प चलता है और उस संकल्प वो जो भी उसके अंदर प्रस्तुत करे, जो भी संशय चले, अगर उसका समाधान नहीं मिले तो उसको तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती ना। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी तो बाबा जो कलकत्ता में गए जहाँ बाबा का पार्टनर था, बाबा ने हीरे जवाहरातों की दुकान खोली ना, तो जो हीरे जवाहरातों की दुकान खोली तो वो पार्टनर को दे रखी थी भागीदार जिसे कहा। वैसे तो भागीदार दोनों ही हो गए, क्योंकि एक ने तन लगाया, एक ने धन लगाया। ब्रह्मा बाबा के पास धन बहुत था तो उन्होंने धन लगा दिया, और वो जो पार्टनर था उसके पास धन नहीं था, गरीब था, तो उसने तन लगा दिया। तो भागीदार तो एक तरह से दोनों ही हुए। तो बाबा ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा विश्वास उस व्यक्ति के ऊपर ही था बाबा को। बाबा की नजर में ईमानदार था। तो कलकत्ता में जाकर के वो साक्षात्कारों का रहस्य बाबा पूछने के लिए पार्टनर के पास गए, लेकिन डायरेक्ट पार्टनर के पास नहीं गए, भागीदार के पास नहीं गए। जो भागीदार की सहयोगी शक्ति थी उसके पास गए, क्योंकि लौकिक में कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो बच्चा पहले कहाँ पर जाता है? माँ के पास जाता है ना। तो उन्होंने सारे साक्षात्कारों का जो साक्षात्कार जो हुए उनको वो जाकर के वो माता को सुनाए। जो पार्टनर के साथ सहयोगी थी, वैसे तो कलकत्ता से जो निर्मल शांता दादी है उनके द्वारा तो कुछ मालूम पड़ा तो बहने थी, क्योंकि हीरे जवाहरातों का धंधा कोई अविश्वास व्यक्ति के ऊपर नहीं दे सकता। इतना बड़ा जो धंधा था तो ऐसे थोड़ी किसी को दे सकता, जरूर कोई संबंधी होगा बाबा का। तो वास्तव में उनके बहनी थी, तो वो सारे जो साक्षात्कार हैं उनको वो माता को सुनाए, इसलिए उसका नाम पड़ गया गीता माता। तो उसने सुना, क्योंकि उन्हें साक्षात्कारों को सुनना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, जैसे एडवांस नॉलेज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में वो सुनने तक भी डरते हैं, तो ऐसा ना हो सुनकर के हमारी बुद्धि चेंज हो जाए। तो वो जो परमात्मा ने जो साक्षात्कार कराए तो उन्हें साक्षात्कारों को कोई सुन ही नहीं सकता था, तो सुने किसने? पहले तो माता ने सुनी, तो सुनना और सुनाना हुआ। और उस माता ने फिर किसको सुनाए? अपने पति को, बोल जो पार्टनर था उसको सुनाए। तो सुनना और सुनाना हुआ माता के थ्रू। और फिर जब उसने सुने भागीदार ने, तभी परमात्मा शिव ने प्रवेश करके उन्हें साक्षात्कारों का रहस्य खोल दिया। तो उसी समय परमात्मा शिव ने उन दोनों में प्रवेश किया, गीता माता में भी और उस प्रजापिता में, उस भागीदार में भी परमात्मा शिव की प्रवेश का होगी। कोई पूछे इसका क्या प्रूफ है, तो मुरली में बाबा ने बोला है क्या? हाँ, 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, माना कोई माता भी 10 वर्ष से ब्रह्मा बाबा के कनेक्शन में थे वो आत्माएं और ध्यान में जाती थी। मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। उनमें उनमें शब्द जो है वो सिंगुलर कहेंगे या प्लूरल कहेंगे? प्लूरल कहेंगे ना, बहुवचन। तो उन दोनों में परमात्मा श्री की प्रवेशता हुई, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। कितना मरतबा था, आज वो है नहीं। उस समय इतना ज्ञान नहीं था क्या? उस समय इतने नॉलेज नहीं थी। तो मतलब परमात्मा शिव की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा से भी पहले कोई बच्चों में हुई। सन 36-37 में पहले पहले जो क्यू की वाणी चलती थी, तो उन मात पिता ने पहले पहले प्रवेशता हुई। तो उन साक्षात्कारों का रहस्य परमात्मा शिव ने प्रवेश करके उस भागीदार को के थ्रू उस गीता माता को सुनाया, और गीता माता के थ्रू दादा देवराज को उन रहस्यों का रहस्य बताया। माना माता पिता से क्या हुई, कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ, क्योंकि बच्चे का जन्म एक से नहीं हो सकता, जन्म देने के लिए दोनों चाहिए ना माता पिता। बाकी स्त्री की रचना रचने के लिए दो नहीं चाहिए, तो वो हो गया रचयिता। कौन? सीता माता सो रही प्रजापिता, वो हो गया रचयिता। क्या पहली पहली फर्स्ट रचना कौन सी हुई? स्त्री। जो बाबा ने भी मुझे बोला, क्या बोले? बोला मुझे पॉइंट क्या है? हाँ, ये बनना जो है मेरी बननी है, पहले पहले हाँ बननी को रचा। तो वो हो गई स्त्री कौन? गीता माता। तो गीता माता
नंबर के रेशन पहले पेज पर 1581 का पैसेज लाख अधिकार चला है। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नतीजा फूट न जाए, सभी सेंटर के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया है, पुराने शरीर से दिल लगाएंगे, क्योंकि ये शरीर भी पुरानी दुनिया का है, अर्थात देह अभिमानी बनेंगे, तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बात को याद करो, माम एकम याद करो, कोई और को याद नहीं करो। उसे याद करो जो बेहद का बरसा देते हैं, हद की प्राप्ति कराने वालों को नहीं, बेहद के बाप को याद करो। बाप और वर्षों की याद करो, क्योंकि पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इतने तुमको पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। अगले जन्म में बनना है या इसी जन्म में? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे नहीं यहाँ शरीर छोड़ दें, अगले जन्म में जाके बनेंगे नहीं। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, तो कई ऐसे हैं जो गली गली गिर पड़ते हैं। सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है,
बाप के साथ सर्विस में साथ ही बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है उसके साथ, बाप के साथ बहुत बड़ी सर्विस है, उसमें साथी बनना चाहिए। इतनी सारी दुनिया को पति से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है तभी बाप को मदद करेंगे। मददगार फिर भी कितने हैं जिनका जाएंगे, कितनी मददगार भुजाएं जाएंगे? ब्रह्मा की भुजाएं कितनी दिखाती हैं? हजार भुजाएं दिखाती हैं। तो ऐसे नहीं है कि सब सर्विस में मदद करेंगे। जिन्होंने कल तो पहले मदद की है ब्राह्मण कुल भूषण ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने थे, वो ही मददगार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कहेंगे। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी पास होकर के जाएंगे तब उनका गायन होता है। आज देव आदि देवी को भी याद करते हैं। तो जो चीज होकर के गई है वो फिर से जरूर होनी, ये तो जानते हो। सचिन वो होकर के गया है उसमें आज सनातन देवी देवताओं पर आजित है जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र पुरुष की मार्ग वाले राज्य करते थे वो अभी 84 जन्म के अंत में। अभी न वो पवित्र हैं और न वो राजा ही पतित बन पड़े। कौन तो जो देवता है 84 जन्म के अंत में अभी हैं, पहले देवता थे सर्वगुण संपन्न वो अभी पतित बन पड़े, फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं, आकर के पावन बनाते हैं। कहते हैं पतितों के बुद्धियों को नहीं लगाओ, अब सारी दुनिया में सब पतित ही है, दुनिया ही पतित है, तो पतित दुनिया में कौन देखने में आवेंगे? पतित ही तो देखने में आवेंगे, तो फिर बुद्धियों किसके लगे? एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल करके हम बाप के वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वो भी युक्ति बतलाते। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्ति बतलाते रहते, कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है, लिखते हैं मनुष्यों की हालत खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हालत बनाकर हम डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल लेते हैं और आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं, तो देखो ये भी कितना हुनर है। ये हुआ अल्पकाल के सुख के लिए, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के लिए मिला ना, टाइम सुधारा बहुत कुछ कमाल करके दिखाते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। ये तो बात ही बिल्कुल नहीं आ रही है, आत्मा पावन वो 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई। तो पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना तो सिवाय बात की और कोई कर ही नहीं सकता। ये एक बात का भी ज्ञान है, सर्व का पति का पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदय का लीडर। आप हमको सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना जिसमें सब आ जाते, सर्व पर दया करने वाला तो एक बात ही गाया जाता है, जिनको हम ग्रेटफुल कहते हैं। ये पति समान से सर्व पर क्या दया करेंगे? पति तो दुनिया में सब पति तो दूसरों की सर्विस नहीं कर सकते, दया नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण बच्चे दूसरों को ज्ञान सुनाकर दूसरों के ऊपर उपकार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। खुद की रग तो देखनी चाहिए अपने अंदर। तो रग क्या है? अगर अपने ही रग का पता नहीं पड़ा, अगर पता पड़ता है, पड़ता तो जरूरी है। तो गुरु जाना गुरु की गुरुरी जाना, या तो परमात्मा बात जानता है हर एक के अंदर से बात, और या बच्चे जानते हैं, बाप और बच्चों की भी बात है। तो समय तो सारा बाप का बच्चों, बच्चों का बाप के पास जाता है। तो बच्चे जानते हैं अपन के अंदर को कि हम तो पति आत्मा है, वृक्ष आत्मा है, हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। हाँ, अगर हिम्मत करते हैं तो बाप दादा मददगार बन जाते हैं। उन बच्चों में बाप दादा प्रवेश करके बच्चों की सर्विस करते हैं। कोई बच्चे अहंकारी होते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि हमने सर्विस की, हमने दूसरों का उपकार किया। परंतु ऐसे होता नहीं है। जो अपने ऊपर ही उपकार नहीं कर सकते, वो औरों के ऊपर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अल्पकाल की। नाम देखो कितने बड़े बड़े रख दिए, सर्वोदय लीडर। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बतलाता हूँ, अगर हल्दी अगर हल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल। क्या युक्ति बताई है? सिर्फ बाप को याद नहीं करो, ये तो साधारण बात हो गई, बाप को याद करो, लेकिन सिर्फ मुझे याद करो और कोई दूसरे को याद नहीं करो, क्योंकि तुम मुझे भी भूल गए, सब भूल गए, कितने जन्म से भूल गए, 63 जन्मों से भूले हुए। सचिव में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए वहां से मुझे याद करने की बेकारी नहीं। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री जियोग्राफी तुमको सुनाई है, तुम ऐसे ऐसे राजी करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी बनते गए। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मौखिक वर्षा दे रहे, जो कल्प कल्प का आकर के यहाँ वर्षा लेते हैं, तीमत पर चलते हैं, कही बाप दादा की मत, उनके सिवाय और कहीं से श्रीमत मिल न सके। बहुत बच्चे समझते हैं हमको तो डायरेक्ट शिव बाबा से मत मिल सकती है, बैठ के मतलब क्या हुए हैं? डायरेक्ट का मतलब हुआ हमें कोई मीडिया बीच में शरीर नहीं चाहिए, कोई रस नहीं चाहिए बीच में मीडिया, हमें डायरेक्ट बुद्धि योग के शिव बाबा से मत ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट शिव बाबा से मत ले सकते हैं तो शिव बाबा को इस सृष्टि पर आने की दरकार रही नहीं। परंतु समझते नहीं है कि निराकार से मत मिलेगी कैसे, कैसे मिलेगी? बात बिगर वर्षा कैसे मिलेगा? निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार ज्योति बिंदु शिव से निराकार वर्षा चाहिए या साकारी सृष्टि का सुख शांति का वर्षा चाहिए? साकारी स्वर्ग का वर्षा चाहिए ना? तो जब साकारी स्वर्ग का वर्षा चाहिए तो बीच में साकार बाप भी जरूर चाहिए, तो दोनों का मेल है। बहुत मूर्ख बुद्धि है जो समझते हैं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, अच्छा तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो तुम मुरली मत सुन, तुम आते ही ज्ञान ले लो। कैसे लेंगे? इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं हो सकती कि कोई कहे कि हमें तो बाबा प्रेरणा देते हैं डायरेक्ट। तो देखो माया अनेक प्रकार के बच्चों को बिघन डालती है। अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं कि हमारा डायरेक्ट शिव बाबा है, ये दादा तो खुद ही पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी माने पुरुष माने आत्मा, अर्थी माने आत्मा के कल्याण अर्थ कार्य करने वाला, ये तो खुद ही अपनी आत्मा के कल्याण में लगा हुआ है, ऐसे समझते हैं। परंतु ब्राह्मण बनने बगैर तो वर्षा मिल ही नहीं सकता। ब्राह्मण माने ब्रह्मा की औलाद जब तक नहीं बने हैं, अपने को बच्चा नहीं बनाया है तब तक वर्षा पान करे। ग्रहचारी बैठती है ना, तो जब ग्रहचारी उतरती है तो ठीक हो जाती है। उसकी आचारी बैठती है, कौन सा आचरण में आ जाते हैं? और जो ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं? नव ग्रह होना चाहिए वृक्षपति का आचरण में, लेकिन और ग्रहों की आचरण में आ जाते हैं तो उनकी ग्रहाचारी बैठ जाती है, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। किसके प्रभाव में? और ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं। तुम विचार करो ये हुनर कोई और में है जो बाप में है? कौन सा हुनर है? नहीं, पतितों को पावन बनाने का हुनर कोई और में नहीं हो सकता। तो पतितों को पावन बनाने का जब हुनर नहीं हो सकता तो विश्व की बादशाही भी कोई नहीं दे सकता। किसको विश्व का मालिक बनाना, ये बाप ही युक्ति सुनाते हैं। कहते हैं इनके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पति तो पावन बाप ही नारी देते हैं, जो खुद ही पतित हैं वो ज्ञान भी कैसा सुनाएंगे? ज्ञान भी पतित पने का सुनाएंगे। बाप के सिवाय और कोई पतित पावन है नहीं। उच्च पद पाने के लिए और कोई नाली दे नहीं सकता। ऐसे नहीं सिर्फ सत्य चक्र को जान